जय दोल। कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। लेफ्टिनेंट सागर ने अपना कीचड़ से सना चमड़े का दस्ताना उतारकर ट्रक के दरवाजे पर पटकते हुए कहा, गुरुंग तुम गाड़ी के साथ ठहरो, हम कुछ बंदोबस्त करेगा। गुरुंग सड़क से जूतों की एड़िया चटाकर बोला, ठीक है साहब। सांझ हो रही थी। 3 दिन मूसलाधार बारिश के कारण नवगांव में रुके रहने के बाद दोपहर की थोड़ी देर के लिए आकाश खुला तो लेफ्टिनेंट सागर ने और देर करना ठीक न समझा। ठीक क्या न समझा, आगे जाने के लिए वह इतना उतावला हो रहा था कि उसने लोगों की चेतावनी को अनावश्यक सावधानी माना और यह सोचकर कि वह कम से कम शिव सागर तो जाकर ही रहेगा रात तक। वह चल रहा था। जोरहाट पहुंचने तक ही शाम हो गई थी, पर उसे शिव सागर के मंदिर देखने का इतना चाव था कि वह रुका नहीं, जल्दी से चाय पीकर आगे चल पड़ा। रात जोरहाट में रहे तो सवेरे चलकर सीधे डिब्रूगढ़ जाना होगा। रात शिवसागर में रहकर सवेरे वह मंदिर और ताल को देख सकेगा। शिवसागर, रुद्रसागर, जयसागर जैसे सुंदर नाम हैं, सागर कहलाते हैं, तो बड़े बड़े ताल होंगे और प्रत्येक के किनारे पर बना हुआ मंदिर कितना सुंदर दिखता होगा। असमिया लोग हैं, बड़े साफ सुथरे, उनके गांव इतने स्वच्छ होते हैं कि मंदिरों का क्या कहना। शिवदोल, रुद्रदोल, जयदोल, सागर तट के मंदिर को दोल कहना जैसी सुंदर कवि कल्पना है। सचमुच जब ताल के जल में मंद मंद हवा से सिहरती चांदनी में मंदिर की कुहासे सी परछाई डोलती होगी, तब मंदिर सचमुच सुंदर हिंडोले सा दिखता होगा। इसी उत्साह को लिए बढ़ता जा रहा था। 30-35 मील क्या है, घंटे भर की बात है, लेकिन एक साथ 1 मील बाकी थे कि गाड़ी कच्ची सड़क के कीचड़ में फंस गई। पहले तो स्टीयरिंग ऐसा मक्खन सा नरम चला मानो गाड़ी नहीं नाव की पतवार हो और नाव बड़े भंवर से हिचकोले खाती झूम रही हो। फिर लेफ्टिनेंट के संभालते संभालते गाड़ी धीमी होकर रुक गई, यद्यपि पहियों के घूमते रहकर कीचड़ उछालने की आवाज़ आती रही। इसके लिए साधारणतः तैयार होकर ही ट्रक चलते थे। तुरंत बेलचा निकाला गया, कीचड़ साफ करने की कोशिश हुई, लेकिन कीचड़ गहरा और पतला था, बेलचे का नहीं पंप का काम था। फिर टायरों पर लोहे की जंजीर चढ़ाई गई, पहिए घूमने पर कहीं पकड़ने का तो कुछ मिले, गाड़ी ठीले, मगर चलने की कोशिश पर लीक गहरी काटती हुई ट्रक धंसता गया, यहाँ तक कि नीचे का गियर बॉक्स भी कीचड़ में डूबने का हो गया। मानो इतना काफ़ी न हो, तभी इंजन ने 2-4 बार फटफट शब्द का किया और चुप हो गया, फिर स्टार्ट न हुआ। अंधेरे में गुरुंग का मुंह नहीं दिखता था और लेफ्टिनेंट ने मन ही मन संतोष किया कि गुरुंग को उसका मुंह भी न दिखता होगा। गुरुंग गोरखा था और फौजी गोरखे की भाषा कम से कम भावना की दृष्टि से गूंगी होती है, मगर आंखें या चेहरे की झुरिया सब समय गूंगी नहीं होती। और इस समय अगर लेफ्टिनेंट साहब की भावुकता उतावली पर विनोद का आभास भी दिख गया तो दोनों में मुख वैमनस्य की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तभी सागर ने दस्ताने फेंक कर कहा, हम कुछ बंदोबस्त करेगा, और फिर फिच फिच कीचड़ में जमाकर बूट रखता हुआ आगे बढ़ चला। कहने को तो उसने कह दिया, पर बंदोबस्त वह क्या करेगा। रात में बादल फिर घिरने लगे। शिव सागर 7 मील है तो दूसरे सागर भी 3-4 मील तो होंगे, और क्या जाने कोई बस्ती भी होगी कि नहीं। और जय सागर भी तो बड़े बिहड़ मैदान के बीच में है। उसने पढ़ा था कि मैदान के बीच में ही रानी जयमती को यंत्रणा दी गई थी कि वह अपने पति का पता बता दे। 5 लाख आदमी उसे देखने इकट्ठे हो गए थे और कई दिनों तक रानी को सारी जनता के सामने सताया तथा अपमानित किया गया था। एक बात तो हो सकती है कि पैदल ही शिवसागर चला जाए, पर उस कीचड़ में फिच फिच साथ मिल, उसी में भोर हो जाएगी। फिर तुरंत गाड़ी के लिए वापस आना पड़ेगा, फिर नहीं वह बेकार है, दूसरी रात गाड़ी में ही सोया जा सकता है। पर गुरुंग, वह भूखा ही होगा, कच्ची रसद तो होगी पर बनाएगा कैसे? सागर ने तो गहरा नाश्ता किया था, उसके पास बिस्कुट वगैरह भी हैं, पर अफसरी का कड़ा कायदा है कि अपने मातहत को कम से कम खाना तो ठीक खिलाए, शायद आसपास कोई गांव हो। कीचड़ में कुछ पता न चला था कि सड़क कितनी और अगल बगल का मैदान कितना। पहले तो दो चार पेड़ भी किनारे थे, पर अब वह भी नहीं। दोनों ओर सपाट सूना मैदान था और दूर दूर के पेड़ भी धुंधले हो गए थे कि भ्रम हो, कहीं चश्मे पर नमी की ही करामात तो नहीं है। अब रास्ता जानने का एक ही तरीका था, जहाँ कीचड़ कम गहरा हो वहीं सड़क इधर उधर हटते ही पिंडलियाँ तक पानी में डूब जाती थी और तब वह फिर धीरे धीरे पैर टटोल कर मध्य में आ जाता। यह क्या यहाँ? हाँ, पुल सा है, यह रेलिंग है, मगर दो पुल हैं, समकोण बनते हैं, समकोण बनते हैं। क्या दो रास्ते हैं? कौन सा पकड़ें? एक कुछ ऊंची जमीन की ओर जाता जान पड़ता था, ऊंचे पर कीचड़ कम होगा, इस बात का ही आकर्षण काफी थी। फिर ऊंचाई पर से शायद कुछ दिख भी जाए। सागर उधर ही को चल पड़ा। पुल के पार पहुंचकर एक ऊंची उठी हुई पटरी सी बन गई। तनिक आगे इसमें कई मोड़ से आए, फिर जैसे धान खेत में कहीं कहीं एक छोटे छोटे खेत एक साथ पड़ने पर उनके मेड़ मानो एक साथ ही कई ओर जान पड़ती थी, इस तरह वह पटरी भी कई ओर को जाती सी जान पड़ी। सागर मानो एक बिंदु पर खड़ा है जहाँ से कई रास्ते हैं, प्रत्येक के दोनों ओर जल मानो अथाह समुद्र में पटरियाँ बिछा दी गई हो। सागर ने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई, शून्य। उसने फिर आँखों की कोरों कसकर झाँक कर देखा, बादलों की रेखा में एक कुछ अधिक घनी सी रेखा उसे दिखी। बादल ऐसा समकोण नहीं हो सकता। यही नहीं, यह इमारत है। सागर उस ओर को बढ़ने लगा। रोशनी नहीं दिखती, पर शायद भीतर कोई हो। पर ज्यों ज्यों वह निकट आती गई उसकी आशा धुंधली पड़ती गई। वह असमिया घर नहीं हो सकता, इतने बड़े घर कहाँ हैं? फिर यहाँ जहाँ बांस और फूस के बांस हुई हो सकते हैं, ईंट के घर नहीं। अरे यह तो कोई बड़ी इमारत है, क्या हो सकती है? मानो उस प्रश्न के उत्तर में ही सहसा आकाश में बादल कुछ फीका पड़ा और सहसा धुंधला सा चांद भी झलक गया। उसके अधूरे प्रकाश में सागर ने देखा एक बड़ी सी ऊपर में चपटी सी इमारत, मानो दुमंजली बरादरी बरामदे से, जिसमें कई एक महराबे एक के बीच मानो आकाश झांक दिया। सागर ठिटक कर क्षण भर उसे देखता रहा। सहसा उसके भीतर कुछ जागा जिसने इमारत को पहचान लिया। यह तो अहोम राजाओं का क्रीड़ा भवन है। क्या नाम है? रंग महल नहीं, हवा महल नहीं, ठीक याद नहीं आता, पर यह उस बड़े पठार के किनारे है जिसमें जयमती एकाएक हवा सनसना उठी। आसपास के पानी में जहाँ तहाँ नरसल के झेप थे, झुककर फुसफुसा उठे जैसे राजा के आने पर भिड़तियों सेवकों में एक सिहरन दौड़ जाए। एकाएक यह लक्ष्य करके कि चांद छिपा जा रहा है, सागर ने घूमकर चिन्ह लेना चाहा कि ट्रक किधर कितनी दूर है, पर वह अभी यह भी नहीं तय कर सका था कि कहाँ क्षितिज है जिसके नीचे पठार है और ऊपर आकाश या मेघाली की चांद छिप गया। और अगर उसने खूब अच्छी तरह आकार पहचान न रखा होता तो रंग महल या हवा महल भी खो जाता। महल में छत होगी, वहाँ सूखा होगा, वहाँ आग भी जल सकती है, शायद बिस्तर लाकर सोया भी जा सकता है। ट्रक से तो यही अच्छा रहेगा, गाड़ी में तो कोई खतरा नहीं। सागर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। रंग महल बहुत बड़ा हो गया था, उसकी कुर्सी ही इतनी ऊंची थी कि असमिया घर उसकी ओट में छिप जाए। पक्के फर्श पर पैर पड़ते ही सागर ने अनुमान किया 30-35 सीढ़ियाँ होंगी। सीढ़ियाँ चढ़कर वह असली ड्योढ़ी तक पहुँचेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा चीख उठी। कई मेहराबों से मानो उसने गुर्राकर कहा, कौन हो तुम? इतनी रात गए मेरा एकांत भंग करने वाले? विरोध के फुत्कार का यह थपेड़ा इतना सच्चा था कि सागर मानो फुसफुसा ही उठा। मैं सागर, आसरा ढूंढता हूँ, रैन बसेरा। पोपले मुंह का बूढ़ा जैसे खिसियाकर हंसा, वैसे ही हवा हंस उठी, ही खी खी खी। यह हवा महल है, हवा महल, अहोम राजा का लीलागार, अहोम राजा का व्यसनी विलासी, छहों इंद्रियों से जीवन की लिसड़ी बोटी से छहों रसों को चूसकर उसे झंझोड़ कर फेंक देने वाले नृशंस लीला पिचासों का यह आसरा, यहाँ बसेरा, ही खी 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 खी। सीढ़ियों की चोटी से मेहराबों के तले खड़े सागर ने नीचे और बाहर की ओर देखा। शून्य, महाशून्य, बादलों में बसी नमी और ज्वाला से प्लवन, ब्रज और बिजली से भरा हुआ शून्य। क्या उसकी गुर्राहट हवा में है, या कि नीचे फैले नंगे पठार को, जिसके चूतड़ों पर दिन भर सड़सड़ पानी के कोणों की बौछार पड़ती रही है, उसी पठार का आक्रोश सिसकन रिरियाहट। इसी जगह, इसी मेहराब के नीचे खड़े कभी अधनंगे अहोम राजा ने अपनी गठीले शरीर को दर्प से अकड़ाकर सितार की खूंटी की तरह उमेड़ कर बाएं हाथ के अंगूठे को कमरबंद में अटकाकर सीढ़ियों पर खड़े छत शरीर राजकुमारों को देखा होगा, जैसे कोई सांड खसिया बैलों के झुंड में देखे। फिर दाहिने हाथ की तर्ज को उठाकर दाहिने भ्रू को तनिक सा संकुचित करके संकेत से आदेश दिया होगा कि यंत्रणा को और कड़ी होने दो। लेफ्टिनेंट सागर की टांगें मानो शिथिल हो गईं। वह सीढ़ी पर बैठ गया, पैर उसने नीचे को लटका दिए, पीठ मेहराब के निचले हिस्से से टेक दी। उसका शरीर थक गया था, दिन भर स्टीयरिंग पर बैठे बैठे और पौने दो मील तक कीचड़ की सड़क में बनी लीकी पर आंखें जमाए रहने से आंखें भी ऐसे चुनचुना रही थी मानो उसमें बहुत बारीक पीसी हुई रेत डाल दी गई हो। आंखें बंद भी करना वह चाहे और बंद करने में क्लेश भी हो, वह आंखें खुली रहकर किसी तरह ठीक को समेट ले या बंद करके देखता रह सके तो। अहोम राजा चुलिक फा राजा में ईश्वर का अंश होता है। ऐसे अंधविश्वास पाने वाला अहोम जाति के लिए यह मानना स्वाभाविक ही था कि राजकुल का अक्षत शरीर व्यक्ति ही राजा हो सकता है। जिसके शरीर में कोई छत है उसमें देवत का अंश कैसे रह सकता है? देवत्व और छून नहीं, ईश्वरत्व अछून ही होता है और राज शरीर अक्षत। अहोम परंपरा के अनुसार कुलघात के सेतु से पार होकर चुलिक फा भी राज सिंहासन पर पहुंचा, लेकिन वह सेतु सदा के लिए खुला रहे इसके लिए उसने एक अत्यंत निरसंस उपाय सोचा। अक्षत शरीर राजकुमार ही राजा हो सकते हैं, अतः सारे अक्षत शरीर उसने प्रतिस्पर्धी और संभाव्य घातक हो सकते हैं। उसने निराकरण का उपाय यह है कि सबका एक एक कान या छिगनी कटवा ली जाए, हत्या भी न करनी पड़े, मार्ग के रोड़े भी हट जाए, लाठी न टूटे, सांप भी मरे नहीं पर उसके विष दंत उखड़ जाएं। छत शरीर कनकटे या छिगनी कटे राजकुमार राजा हो ही नहीं सकेंगे, तब उन्हें राजघात का लोभ भी न सताएगा। चुलिक फा ने सेनापतियों को बुलाकर गुप्त आज्ञा दी कि रात में चुपचाप राजकुल के प्रत्येक व्यक्ति के कान या छिगनी काट कर प्रातःकाल दरबार में राज चरणों में अर्पित किए जाएं, और प्रातःकाल वहीं रंग महल की सीढ़ियों पर उसके चरणों में यही विभत्स उपहार चढ़ाया गया होगा और उसने उसी दर्द भरी आवाज में होठों की यार सी तनी पतली रेखा को तनिक मीढ़ सी देकर शब्द किया होगा, हूँ, और रक्त सने थाल में पैर से तनिक सा ठुकरा दिया होगा। चुलिक फा निष्कंटक राजा, लेकिन नहीं, यह तीर कैसा साल गया, एक राजकुमार भाग गया, अक्षत। लेफ्टिनेंट सागर मानो चुलिक फा के चित्कार को स्पष्ट सुन सका, अक्षत भाग गया। वहां सामने लेफ्टिनेंट ने फिर आंखों को कसकर बादलों की दरार को भेदने की कोशिश की। वहां सामने वो कहीं नागा पर्वत श्रेणी है वनवासी वीर नगा जातियों से अहोम राजाओं की कभी नहीं बनी। वे अपने पर्वतों के नंगे राजा थे। ये अपनी समतल भूमि के कौशेय पहनकर भी अधनंगे रहने वाले महाराज पीढ़ियों के युद्ध के बाद दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं बांध ली थी और कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं करता था। केवल सीमा प्रदेश पर पड़ने वाली नमक की झीलों के लिए युद्ध होता था, क्योंकि नमक दोनों को चाहिए था। पर अहोम राजद्रोही नागा जातियों के सरदार के पास आश्रय पाए असह्य हैं, असह्य। हवा ने साय साय करके दाद दी, असह्य। मानो चुलिक फा के विवश क्रोध की लंबी सांस सागर की देह को छू गई। यहीं खड़े होकर उसने वह सांस खींची होगी। उस मेहराब को ईंट ईंट में तो उसने सुलगते वायु कनकन बसे होंगे, लेकिन जाएगा कहाँ? उसकी वधु तो है, वह जाने कि उसका पति कहाँ है, उसे जानना होगा। जयमती अहोम राज की अद्वितीय सुंदरी जनता की लाडली होने दो। चुलिकफा राजा है, वह शत्रुविहीन निष्कंटक राज्य करना चाहता है। जयमती को पति का पता देना होगा, उसे पकड़वाना होगा। चुलिकफा उसका प्राण नहीं चाहता, केवल एक कान चाहता है या एक छिगुनी, चाहे बाएं हाथ की ही छिगुनी, चाहे बाएं हाथ की ही छिगुनी हो। क्यों नहीं बताएगी जयमती? वह प्रजा है, प्रजा की हड्डी बोटी पर भी राजा का अधिकार है। बहुत ही छोटे क्षण के लिए चांद झलक गया। सागर ने देखा सामने खुला आकारहीन दिशाहीन मानातीत नीरा विस्तार, जिसमें नरसलों की साएं साएं हवा का असंख्य कराहटों के साथ रोना, उसे घेरे हुए मेहराबों की क्रुद्ध सांपों की सी फुफकार। चांद फिर छिप गया और पानी की नई बौछार के साथ सागर ने आंख बंद कर ली। असंख्य सहमी हुई कराहें और पानी की मार ऐसे जैसे नंगे चुतड़ों पर स दिया प्रांत के लचीले बेतों की सड़ाक सड़ाक। स दिया अर्थात सव दिया। कब किसका सव वहां मिलता था याद नहीं आता, पर था सव जरूर। किसका सव? नहीं, जयमती का नहीं। वह तो उन 5 लाख बेबस देखने वालों के सामने एक लकड़ी के मंच पर खड़ी है, अपनी ही अस्पृश्य लज्जा में अभेद मौन, अटूट संकल्प और दुर्दमनीय स्पर्धा में लिपटी हुई। 7 दिन की भूखी प्यासी घाम और रक्त की कीच से लथपथ, लेकिन शेष नाक के माथे को में ठुकी हुई कील की भांति अडिग आकाश को छूने वाली प्रातः शिखा सी निष्कंप। लेकिन यह का क्या? सागर तिल मिलाकर उठ बैठा। मानो अंधेरे में भूत ही सा दिख पड़ने वाली वह लाखों की भीड़ भी कांप कर फिर जड़ हो गई। जयमती के गले से एक बड़ी तीखी करुणा चीख निकलकर वायु मंडल को भेद गई, जैसे किसी थुलथुल कछुए के पेट को मछेरे की बर्छी। सागर ने बड़े जोर से मुठिया भींच ली। क्या जयमती टूट गई? नहीं, यह नहीं हो सकता। नरसलों की तरह बिना रीढ़ की गिरती पड़ती इस लाख जनता के बीच वह तो देवदारू सी तनी खड़ी है, मानवता की ज्योति, श्लाका। सहसा उसने पीछे से एक दृप्त रूखी अवज्ञा भरी हंसी से पीतल की तरह झंझनाते स्वर ने कहा, मैं राजा हूँ। सागर ने चौंक कर मुड़कर देखा। सुनहला रेशमी वस्त्र, रेशमी उतरिए सोने की कंठी और बड़े बड़े अनगढ़ पन्नों की माला पहने भी अधनंगा एक व्यक्ति उसकी ओर ऐसी दया भरी अवज्ञा से देख रहा था जैसे कोई राह किनारे के कृमि कीट को देखे। उसका सुगठित शरीर छेनी से तरासी हुई चिकनी मांसपेशियां दर्प अस्पित नसाएं तेल से चमक रही थी। आंखों की कोर में लाली थी जो अपनी अलग बात कहती थी, मैं मद भी हो सकती हूँ, गर्व भी, विलास भी, लोलुपता भी और नीरी श्रीसंस भर रक्त पिपासा भी। सागर टुकुर टुकुर देखता रह गया, न उठ सका न हिल सका। वह व्यक्ति फिर बोला, जयमती हूँ। जयमती, अंगूठे और तर्जनी की चुटकी बनाकर उसने झट दी, मानो हाथ का मैल कोई मसलकर फेंक दे। बिना क्रिया बिना क्रिया के भी वाक्य सार्थक होता है, कम से कम राजा का वाक्य। सागर ने कहना चाहा नृशंस राक्षस, लेकिन उसकी आंखों की लाली में एक बाध्य करने वाली प्रेरणा थी। सागर ने उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए देखा, जयमती सचमुच लड़खड़ा गई थी। चीखने के बाद उसका शरीर ढीला होकर लटक गया था, कोड़ों की मार रुक गई थी, जनता सांस रोके सुन रही थी। सागर ने भी सांस रोक ली, तब मानो स्तब्धता में उसे अधिक स्पष्ट दिखने लगा। जयमती के सामने एक बांका खड़ा था, सिर पर कलंगी, कले में लकड़ी के मुंडों की माला, मुंह पर रंग की ब्योघ्रम रेखाएं, कमर में घास की चटाई की कौपीन, हाथ में बर्छी, और वह जयमती से कुछ कह रहा था। सागर के पीछे एक दर्प अस्फीत स्वर फिर बोला, चुलिकफा के विधान में हस्तक्षेप करने वाला यह ठीठ नग्गा कौन है? पर सहसा उस नंगे व्यक्ति का स्वर सुनाई पड़ने लगा और वह सब चुप हो गए। जयमती, तुम्हारा साहस धन्य है, जनता तुम्हें देवी मानती है, पर और अपमान क्यों सहो? राजा का बल अपार है, कुमार का पता बता दो और मुक्ति पाओ। अब की बार रानी चीखी नहीं, शिथिल शरीर फिर एक बार कराह कर रह गई। नगावीर फिर बोला, चुलिकफा केवल अपनी रक्षा चाहता है, कुमार के प्राण नहीं। एक कान दे देने में क्या है, या छिगुनी, उतना तो कभी खेल में या मल युद्ध में भी जा सकता है। रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुलिकफा डरपोक है, डर निशंस होता है, पर तुम कुमार का पता बताकर अपनी मान रक्षा और पति की प्राण रक्षा कर सकती हो। सागर ने पीछे सुना, हूँ, और मुड़कर देखा, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक क्रूर कुटिल मुस्कान खेल रही है। सागर ने उद्यत होकर कहा, हूँ, क्या? वह व्यक्ति तनकर खड़ा हो गया, थोड़ी देर सागर की ओर देखता रहा, मानो सोच रहा हो इसे वह क्या उत्तर दे। फिर और भी कुटिल ओठों के बीच से बोला, मैं चुलिकफा डरपोक अभी जानेगा, पर अभी तक मेरे काम ही कह रहे हैं। नगाबीर जयमती के और निकट जाकर धीरे धीरे कुछ कहने लगा। चुलिकफा ने भौं सिकोड़ कर कहा, क्या फुसफुसा रहा है? सागर ने आगे झुककर सुन लिया, जयमती, कुमार तो अपने मित्र नगा सरदार के पास सुरक्षित है, चुलिकफा तो उसे पकड़ ही नहीं सकता। तुम पता बताकर अपनी रक्षा क्यों न करो, देखो तुम्हारी कोमल देह। आवेश में सागर खड़ा हो गया, क्योंकि उस कोमल देह में एक बिजली सी दौड़ गई और उसने तनकर सहसा नगावीर की ओर उन्मुख होकर कहा, कायर नपुंसक, तुम नगा कैसे हुए? कुमार तो अमर है, कीड़ा चुलिकफा उन्हें कैसे छुएगा? मगर क्या लोग कहेंगे, कुमार की रानी जयमती ने देह की यंत्रणा से घबराकर उसका पता बता दिया। हट जाओ, अपना कलंकी मुंह मेरे सामने से दूर करो। जनता में तीव्र सिहरन दौड़ गई, नरयसल बड़ी जोर से कांप गए, गंदले पानी में हलचल उठी, जिसके लहराते गोल वृत्त फैले की फैलते ही गए, हवा फुफकार उठी, बड़े जोर की गड़बड़ाहट हुई, मेघ और काले हो गए। यह नीरी रात है कि महानिशा की यंत्रणा की रात, सातवीं रात कि नौवीं रात? और जयमती क्या अब बोल भी सकती है? क्या यह उसके दृढ़ संकल्प का मौन है कि असक्तता का? और यह भीड़ है कि नई भीड़, वह नगावीर कि दूसरा कोई? कि भीड़ में कई नगे बिखरे हैं, चुलिकफा ने कटु स्वर में कहा। फिर आया वह नगा। नगावीर ने पुकार कर कहा, जयमती, रानी जयमती, रानी हिलू डुली नहीं। वीर फिर बोला, रानी, मैं उसी नगा सरदार का दूत हूँ जिसने के यहाँ कुमार ने शरण ली है, मेरी बात सुनो। रानी का शरीर कांप गया, वह एक टक आंखों से देखती लगी, कुछ बोली नहीं सकी। नहीं, तुम कुमार का पता दे दो, सरदार उसकी रक्षा करेंगे, वह सुरक्षित है। रानी की आंखों में कुछ घना हो गया आया, बड़े कष्ट से उसने कहा, नीच, एक बार उसके ओठों पर जीभ फेरी, कुछ और बोलना चाहा पर सकी नहीं। चुलिकफा ने वहीं से आदेश दिए, पानी दो इसे, बोलने दो। किसी ने रानी के होठ की ओर पानी बढ़ाया, वह थोड़ी देर मिट्टी के कसोरे की ओर तृष्णा दिखती रही, फिर उसने आंख भरकर नगा युवक की ओर देखा, फिर एक घूंट पी लिया। तभी चुलिकफा ने कहा, बस एक घूंट, अधिक नहीं। रानी ने एक बार दृष्टि चारों ओर लाख लाख जनता की ओर दौड़ाई, फिर आंखों नगा युग पर गड़ाकर बोली, कुमार सुरक्षित हैं और कुमार की यह लाख लाख प्रजा जो उनके लिए आंखें बिछाए हैं, एक नेता के लिए जिसके लिए पीछे चलकर अतताई का राज उलट दे, जो एक आदर्श मांगती है, मैं उसकी आशा तोड़ दूं, उसे हरा दूं, कुमार को हरा दूं। वह क्षण भर चुप हुई। चुलिकफा ने एक बार आंख दौड़ाकर सारी भीड़ की ओर देख लिया। उसकी आंख कहीं टिकी नहीं, मानो उस भीड़ में उसे टिकने लायक कुछ नहीं मिला, जैसे रेंगते कीड़ों पर दीठ नहीं जमती। नगा ने कहा, प्रजा तो राजा फूली चुलिकफा की है ना? रानी ने फिर उसे स्थिर दृष्टि से देखा, फिर धीरे से कहा, चुलिक, और फिर कुछ ऐसे भाव से अधूरा छोड़ दिया कि उसके उच्चारण से मुंह दूषित हो जाएगा। फिर कहा, यह प्रजा कुमार की है। जाकर नगा सरदार से कहना कि कुमार। वह फिर रुक गई। पर तू तो नगा नहीं, तू तो उस गिद्ध की प्रजा है, जा उसके गंदे पंजे को चाट। रानी की आँख चुलिकफा की ओर मुड़ी, उसकी दीठ ने उसे छुआ नहीं, जैसे किसी गिलगिली चीज की ओर आंखें उठाने में भी घिन आती है। नगा ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ है मेरा राजा? चुलिकफा ने वहीं से पुकार कर कहा, मैं यह हूँ अहोम राज का एक छत्र शासक। नगा युवक सहसा उसके पास चला आया। सागर ने देखा है, भीड़ का रंग बदल गया है, वैसे ही अंधकार, वैसे ही अथाह प्रसार, पर उसमें जैसे कहीं व्यवस्था, भीड़ में जगह जगह नगा दर्शक बिखरे, पर बिखरेपन में भी एक माप। नगा ने पास से कहा, मेरे राजा? एकाएक बड़े जोड़ की गड़गड़ाहट हुई। सागर खड़ा हो गया, उसने आंखें फाड़ कर देखा। नगा युवक सहसा बर्छी के सहारे कई एक सीढ़ियाँ फाँद कर चुलिकफा के पास पहुँच गया। बर्छी सीढ़ी की ईंटों की दरार ने फंसी रह गई, पर नगा चुलिकफा को धक्के से गिराकर उसकी छाती पर चढ़ गया। उधर जनता में एक बिजली कड़क गई, कुमार की जय। किसी ने फांद कर मंच पर चढ़कर कोड़ा लिए जल्लादों को गिरा दिया है, किसी ने अपना अंग वस्त्र जयमती पर डाला है और उसके बंधन की रस्सी टटोल रहा है। पर चुलिकफा और नगा सागर मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। उसकी दीठ चुलिकफा पर जमी थी। सहसा उसने देखा, नगा तो निहत्था है, पर नीचे पड़े चुलिकफा के हाथ में एक चंद्राकार डाओ है, जो वह नगा के कान के पीछे साध रहा है। नगा को ध्यान नहीं, मगर चुलिकफा की आंखों में पहचान है कि नगा कोई और नहीं, स्वयं कुमार है, और वह डाओ साध रहा है। कुमार छाती पर है, पर मर जाएगा, या क्षत भी हो गया तो चुलिकफा ही मर गया। तो भी अगर कुमार क्षत हो गया तो सागर उछला, वह चुलिकफा का हाथ पकड़ लेगा, डावो छीन लेगा। पर वह असावधानी से उछला था, उसका कीचड़ सना बूट सीढ़ी पर फिसल गया और वह लुढ़कता लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। अब चुलिकफा का हाथ सध गया है, डावो पर उसकी पकड़ कड़ी हो गई है। अब लेफ्टिनेंट सागर ने वहीं पेड़ पड़े कमर से रिवाल्वर खींचा और शिस्त देकर दाग दिया, धाएं। धुआं हो गया, हटेगा तो दिखेगा, पर धुआं हटता क्यों नहीं? आग लग गई, रंग महल जल रहा है, लपटे इधर उधर दौड़ रही हैं। क्या चुलिकफा जल गया? और कुमार, क्या वह कुमार की जय ध्वनि है कि जयमती की यह अद्भुत रोमांचकारी गूंज, जिसमें मानो वह डूबा जा रहा है? नहीं, उसमें संभलना होगा। लेफ्टिनेंट सागर सहसा जाग कर उठ बैठा, एक बार हक्का बक्का होकर चारों ओर देखा, फिर उसकी बिखरी चेतना केंद्रित हो गई। दूर से ही दो ट्रकों की दो जोड़ी बत्तियां पूरे प्रकाश से जगमगा रही थी और एक से सर्च लाइट इधर उधर भटकती हुई रंग महल की सीढ़ियों को छन छन ऐसे चमका देती थी मानो बादलों से पृथ्वी तक किसी वज्र देवता के उतरने का मार्ग खुल जाता है। दोनों ट्रकों के हॉर्न पूरे जोर से बजाए जा रहे थे। बौछार से भींगा हुआ बदन झाड़ कर लेफ्टिनेंट सागर उठ खड़ा हुआ। क्या वह रंग महल की सीढ़ियों पर सो गया था? एक बार आंखें दौड़ाकर उसने देखा मेहराब को। चांद निकल आया था, मेहराब की ईंटें दिख रही थी, फिर धीरे धीरे उतरने लगा। नीचे से आवाज आई, साहब दूसरी गाड़ी आ गया, टी करके ले जाएगा। सागर ने मुंह उठाकर देखा और देखता रह गया। दूर चौरस ताल चमक रहा था, जिसके किनारे पर मंदिर भागते बादलों के बीच कांपता हुआ मानो शुभ्र चांदनी से ढका हुआ हिंडोला। क्या एक रानी के अभिमान का प्रतीक जिसने राजा को बचाया, या एक नारी के साहस का जिसने पुरुष का पथ प्रदर्शन किया, या कि मानव मात्र को अदम्य स्वतंत्रता प्रेरणा का अभीत अज्ञेय जयदोल। समाप्त।